किंतु ये पुण्य क्रिया जब अप्राकृत होकर के ऊपर उठ जाता है तब भगवान इसका पालन पोषण सब कुछ होता है। तो इसलिए कहते हैं वो सनत सनंदन सनत सुनाया है, योग्य के योग्य बनने पर ही योग्य मिलता है, नहीं तो नहीं। तो उसके अभी पात्र के गुप्त हैं, इसलिए हम लोगों में अभी क्या चीज है, तामसिक रज और तम, इसी के द्वारा क्रोध शत्रुता मित्रता किसी चीज में आसक्ति किसी चीज में विराग, विराग किस लिए आता है? आप गए किसी मित्र के पास और उसने कोई बातचीत हुई और एक थप्पड़ मार दिया और आपका जो चीज था उसने ले लिया, आप क्या करेंगे? उसे आप मित्रता रहेगी, बस उसे विराग हुआ कि नहीं? इसलिए विराग हो, अब कभी मैं कान पकड़ता हूं कभी उसके पास, और वो हमारा शत्रु है। इसलिए ये सब जगत में जितने भी भाव हैं अहम और मम के लिए ये काट दिया जाएगा सब कुछ। ये सनत जी सनत कुमार चारों भाई वहां पर उपस्थित हुए, ये सात्विक रूप में प्रजाओं का पालन कर रहे थे। तो जी इसी में ये लगान हो जाएगा और अपने को बड़ा योग्य समझेगा, जगत का पालन करना और जगत का ध्वंस करना दोनों में कौन उत्तम है? कौन उत्तम है? अरे बंधन है ना, बंधन है कि नहीं? एक लोहे का और एक
सोने का,
दोनों का यही अंतर है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। जो बंधन का क्लेश है वो दोनों में है, ब्रह्मा भी रजगुण से बंधे हुए हैं और हम लोग तामसिक गुण से बंधे हुए, कोई अंतर विशेष नहीं है। पाप और पुण्य में कोई अंतर नहीं है कि पुण्य से लयो ना नाम में थी क्या पाप और पुण्य दोनों ही एक ही समान विषाक्त खड़े हैं।
धर्म
बंगला कीर्तन पाप लयो नाम, पाप और पुण्य दोनों में कोई अंतर नहीं है, नरक और स्वर्ग में कोई विशेष अंतर नहीं है बुद्धिमान पुरुषों के लिए। क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं, वहां पर भी भोग करना है वहां पर भी भोग करना है, दोनों को भगवत भक्ति से कोई भी संबंध नहीं। इसलिए नरक में भी रहें भगवान का नाम करता रहूं और स्वर्ग में रहूं तो भी भगवान, उसमें तुल्यार्थ दर्शिन क्या है ना, नरक नरकेशु
स्वर्ग नरकेशु का तुल्यार्थ दर्शिन,
दोनों में तुल्य दर्शन करते हैं। जहां भी रहेंगे भगवत भक्त कुल में हमारा जन्म हो, नीचे जो निवेदी नरक में ग्रहों को भगवान नाम भक्तों का संबंध। इसलिए रहे हैं कि जब वहां पर पहुंचे तो उनको पात्र समझ करके उनको, अभी तक वो राजसिक और तामसिक भाव में और अहम मम कुछ उनमें बढ़ा हुआ था, किंतु पालन कर रहे थे और समझ रहे हैं कि इससे बढ़कर के पूछे में कोई चीज नहीं। कल तो कहीं देख रहा था तो उसने लिखा है गृहस्थ एक त्यागी कह रहे हैं, एक त्यागी महात्मा नामधारी, अरे जय गुरुदेव, वो कह रहा है कि सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ, तो तू त्यागी क्यों हुआ? तू बदमाश त्यागी क्यों हो गया? है त्याग के गृहस्थ उत्तम, यदि भगवत भक्त हो तो सबसे बढ़ यहां तक कि देवताओं से भी बढ़ करके है, पांडव लोग देवता का वैकुंठ से भी ऊपर में है। साधारण भी गृहस्थ व्यक्ति जो भगवान का भजन करता और एक त्यागी व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता, हम ब्रह्मासी हम ब्रह्मासी, उसे करोड़ गुना अच्छा नहीं है, कोई तुलना ही नहीं हो सकती। किंतु वही कह रहा है और फिर वो अपने ही वही पर है, त्यागी बना हुआ है। जत पाद पंकज पलास विलास हत्या, यदि इस ग्रंथि को रज और तम को दूर करना है, इसी से संसार में समस्त आसक्ति और ये पैराग्य इत्यादि होता है, जब वस्तुओं से कोई चीज लाभ नहीं होता उससे हमारा कुछ हानि होता है ना, तो उसको फेंक देते हैं। आम जब सड़ जाता है ना, गल जाता है, तो क्या करते हैं, कभी उसके तरफ में देते हैं क्या करते हैं? और वही जब पका हुआ खूब सुंदर लाल टेसु हो गया है और सुंदर सुगंध निकल गई है, तो जीव से पानी आ गया, तो उसको हुक बैकुल कैसे कैसे रसगुल्ला खूब अच्छा है और उसमें दुर्गंध हो गई, कोई कितने दिन का हो गया ना, बस अब इच्छा नहीं, उसे विराग होगा। ये संसार से विराग इसीलिए होता है, और एक भक्ति का जब भक्ति होता है वो विराग होता है, वो स्वाभाविक होता है। इसलिए कहते हैं देखो भगवान का यही सबसे पालन पोषण करना है इस संसार का, और फिर ये बुरी चीज है और ये अच्छी चीज है, यही भद्र यही अभद्र यही द्वैता द्वैत ज्ञान यो सब अभद्र, ये सभी जगत का भला जगत का बुरा दोनों ही, जैसे स्वर्ग और नरक सुख और दुख हम लोगों के लिए, बल्कि दुख अच्छा है कि उसमें भगवान का स्मरण होगा, चिंता करेंगे ये दुख दूर कैसे, किंतु सुख में नहीं। इसलिए से देखो यदि तुम कल्याण चाहता है तो भज वासुदेव, वासुदेव के भगवान का, वासुदेव किसको कहते हैं, सत्य सप्तम
विशुद्ध सप्तम वसुदेव सप्तम,
विशुद्ध सप्त स्वरूप भगवत भक्त होते हैं, उनमें वासुदेव जो है
उनका
उसी उसमें भगवान वसुदेव जी का रूप था, इसलिए भजन करो वासुदेव माने कृष्ण का भजन करो। उनके जतपाद पंकज पदार्थ विलास भक्त्या, जतपाद जिनके चरण कमल पंकज चरण रूपी कमल, पलाश पलाश माने यहां पर अंगुली, और उसका विलास
नख,
नख नख चंद्र की जो भक्ति है उसके प्रति जो भक्ति कैसी है, जिस पर समस्त ब्रजवासी लोग अपना सर्वोच्च निष्ठावर करते, मथुरा में यहां कराने वाली जितनी रमणी और जितने पुरुष थे सब लोगों ने अपने को निष्ठावर कर दिया, अरे सोम ये सोने के लिए स्थान नहीं है, मैं तो एक बालिक दिलवा दूंगा तो वो अच्छी तरह सोम अच्छी तरह से काम करके बैठे, कितने उनके सुंदर चरण कमल हैं, उसके चरणों का विलास कैसा है, समस्त लोग द्वारकावासी जितने हैं लोग सब उन पर निर्भर, सबसे अधिक जबकि उन चरणों का जब विलास होता है नखों का वृंदावन, जिस पर गोपियां समस्त सब कुछ निर्भर करके उसको अपने सिर पर अपने अंगों पर धारण करने की लालसा करती, और कहते हैं कि ये जो चरण है और इनका जो विलास पलाश है अंगुलियां हैं, ये वनों में पर्वतों के ऊपर में कठोर के ये सब चीजों पर चलती है, कहीं कुछ चुभ न जाए, इसलिए उनके हृदय में सब समय कांटा चुभता है। इस तरह से ये आराध्य ये गोपियों का सत्य है, लक्ष्मी जी तो सब समय सेवा करती ही है, किंतु उससे भी अधिक ये सेवा करती है, कुमकुम इत्यादि लगा करके सब प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, तो भक्ति है। इस भक्ति का यदि लेश भी किसी को मिल जाए उनको कहते हैं किसको, पृथ्वी महाराज जी को कहते, यदि उनको भगवान नारायण के चरण के विलास की अनुभूति है, जिसका जिसकी सेवा करती हैं लक्ष्मी, कृष्ण का भी तक उतना ऊंचा किंतु हो सकता है क्योंकि भागवत के वक्ता है ना, समस्त मंडल भागवत के वक्ता है, एक संकर्षण से जो आया है भागवत की
कथा परंपरा
उसमें वो भी, इसलिए ये भागवत की भी परंपरा, यहाँ तक कि वो जो अष्टकाली लीला है उसके भी ये गुरु है। तो वो भक्ति यदि थोड़ी सी भी हो जाए, गुणमय भक्ति भी हो, कोई हर शुद्धा भक्ति की तो बात ही क्या, गुणमय भक्ति माने कर्म मिश्रा अथवा ज्ञान मिश्रा भी हो, और यदि भक्ति मिश्रा ज्ञान और कर्म हो तो कहना ही क्या, एक कर्म मिश्रा भक्ति होती है और एक भक्ति मिश्रा कर्म होता, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, भक्ति की प्रधानता जिसमें होती है वो, कर्म की प्रधानता वाला गड़बड़ हो जाता है, उसको गुणमयी भक्ति कहते हैं, वही आरोप सिद्ध है। और जहां पर
भक्ति योग
की प्रधान है, और नहीं तो कर्म प्रधान हो जाएगा और भक्ति रहेगी, तो ये सगुण उपासना, इसी को कहते हैं क्या वो आरोप सिद्ध है। भक्ति के केवल मात्र एक छटा से वो ऐसी भक्ति है, उसकी एक छटा से ही कर्माशय, कर्म मिश्रा भक्ति से ही ये कर्माशय दूर होगा, क्यों, शुद्धा भक्ति की कोई वहां पर जरूरत नहीं, जैसे मुक्ति के लिए भक्ति की जरूरत नहीं है, वो नमाभास से ही वो मुक्ति मिल जाती है, शुद्धा भक्ति इसके द्वारा कृष्ण प्रेम मिलता है, वो बहुत ऊंची बात है। उसी तरह से भक्ति की तो बात छोड़ दो, या औपाधिक भक्ति जो कर्म मिश्रा भक्ति या ज्ञान मिश्रा भक्ति, इसी भक्ति के द्वारा ही कर्म सब उदग्रस्त है, मुक्ति हो जाती है, मुक्ति का ही यहां पर कारण है। कर्माशय, कर्माशय माने क्या, आश्रय माना होता है हृदय, कर्म का सबसे सूक्ष्म जो वासना है इसको कहते हैं जो हमारे हृदय में जमी रहती, सब कुछ ऊपर से कर्म का प्रायश्चित कर लेंगे, किंतु वो जो वासना है जिसको पीछे से अविद्या से वासना होती है, कि ये वासना नहीं जाती, ये वासना से फिर कर्म उगती है, इसलिए वासना को निकालना है। वासना जब तक दुख की घास की जड़ न निकाल दी जाए, और वो बरगद के पेड़ की जड़ को निकाल करके और मट्ठा वहां पर डाल दिया जाए, एकदम सब को खत्म कर देगा, उगने नहीं देगा, ऐसा ही कर्माशय ग्रथितम उदग्रथयन्ति संतः। संत इसका लक्षण दिया है श्रीमद् भागवत, ये किसको महाभागवत, वैष्णव अथवा भक्त, भाव भक्त इत्यादि का उत्तम भागवत इत्यादि का, जो कि विश्व ब्रह्मांड में सब लय लाए जाने पर भी उनको कुछ भी चित्त में
क्षोभ नहीं
होता, और विश्व ब्रह्मांड की समस्त संपत्ति मिल जाने पर भी उनको आनंद इत्यादि नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही ये सनत सनत कुमार ये हैं, वो लोग भी ऐसे ही प्रलय हो जाता है तभी उनको बात नहीं, और विश्व समृद्ध रहता है तभी उनको कोई बात नहीं, उन लोगों से कुछ भी मतलब नहीं। तो वो करें ये कर्माशय जो है ना बहुत गहरे, उसकी गहरा जड़ है, और ये जब तक जड़ नहीं जाएगा तब तक जन्म मरण ये दूर, इसको दूर करने के लिए इसका जो कर्म की जो वासना है मूल है वो कैसे जाएगी, संतों के द्वारा उद्ग्रथयन्ति सुख से ही उखाड़ लेते हैं जड़ समूह और उसको जला देते हैं, फिर अब दूर की घास रहे ना उसकी जड़ को निकाल लिया और जड़ को निकाल करके फेंक दिया तो क्या हुआ, जहां जहां रहेगा वहां पर फिर जमेगी ना, लाख एक घास अब लाख रूप में जमेगी, ऐसे ही यदि उखाड़ करके फेंकेंगे जला नहीं देने से फिर आ जाए। वो भक्त लोग क्या करते हैं, उद्ग्रथयन्ति खोल करके उखाड़ करके और जला करके सदा के लिए निश्चिन्न कर देते, ऐसे संतों की कोई बात न माने ना, और उसी जड़ ये जो कर्म की वासना है सब राजसिक और तामसिक नहीं, फिर फिर बहुत देर भी लंबा लगेगा। इसलिए संत लोग कैसे उखाड़ते हैं भगवान की कथाओं के माध्यम से, कैसी कथाएं जो उनके हृदय में जल प्रपात के समान है अपने आप कदम करके बह रही है, एक धारा में नहीं अजस्त्र धाराओं में बह रही है वो कथा निर्गल। और कोई पानी हमसे मत लो ऐसा नहीं, नदी जब बहती है ना तो नदी कहती है भाई हमारा पानी तुम मुसलमान है कि हिंदू है कि कोई सिख है कि कोई दुष्ट है चोर है डकैत है, किसी के लिए कहती है, सबके लिए समान रूप में कहती है। भक्त लोग उससे भी अधिक होते हैं, कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं होती कि हमारा पानी तुम लोग मत लो, जैसे कोई भी पानी जितना भी जिसका जितना पात्र है उतना ही है। तो संत लोग उससे भी अधिक दयालु होते हैं, उनके हृदय से भगवान की जो कथाएं जो भरी पड़ी हैं अमृत रसमयी मधुर उसके द्वारा इसको सदा के लिए निर्मूल कर सुख से। सुख से कैसे, एक आदमी मान लिया कि बहुत दुखी है, बहुत दुखी कर्म की वासना उसके हृदय में लगी, उखड़ नहीं गई, बस भगवान की कथा से तुम भागवत की कथा की कथा थी, प्रहलाद महाराज जी की कथा थी, वो कौन से नए शरीर में कपिल देव मुनि का पुरंजन उपाख्यान और जो भवाटवी का और इसके बाद में फिर सूर्य वंश और चंद्र वंश की अद्भुत अद्भुत कथाओं को सुना कर आपको दूर करते सुख से। कितना सुख होता उसने आनंद जब हम प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं और हिरण्यकश्यप उनको किसी प्रकार से मारने की चेष्टा करके नहीं मार सकता, और बच्चों को जब हरी कथा सुनाने लगते हैं उसका एक पद भी जब समझ में आता है तो कितना आनंद होता है। और यशोदा मैया कृष्ण को बांध रही, गोपियां हंस रही हैं, कृष्ण रो रहे हैं भुलक भुलक करके आंसू घर गिर रहे हैं, लंबे लंबे श्वास ले रहे हैं। आप वहां पर पहुंचिए देखिए तो सुनिए तो परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी कितना आनंद लग रहा है। और पहुंच जाइए सेवा कुंज में, कृष्ण जी राधा जी को मना रहे हैं, वहां से आप मत सुनिए चले जाइए होगा, यदि वहां पर कृष्ण मना रहे हो राधा जी तो वो प्रसंग सुनने की इच्छा नहीं होगी, आने की इच्छा होगी, और उसे होगा क्या, जितनी कर्म वासना जो कुछ है सब कुछ एक सेकंड में जिसको कहते हैं सुख को परिणाम कर रहे हैं। और कृष्ण की दामोदर लीला इत्यादि का सवेरा हुआ सब गोपियां दधि मंथन कर रही हैं, और उदुखल है ना उदुखल में नहीं और मंथन करती हुई और मक्खन का लड्डू निकाल दो और करेंगे क्या वो नहीं गोविंद दामोदर माधव दामोदर यदि यहां आ जाता, गोविंद यदि आ जाता, माधव यदि आ जाता तो ये
मक्खन का लड्डू
चिंतन करते ही कर रहे हैं, कितने सुख से गा रहे हैं। तो इस तरह से सदवत निरुक्त मतयो जतयो अपि उद्ध श्रोतागणा स्मरणम भजवा दुरे सदवत जितने सुख से वो भवबंधन को काट देते हैं, उनकी वासनाएं निकल जाती हैं, संत लोग निकाल देते हैं, हरि कथा इतनी समुद्र इतनी मधुर है कि आनंद से वो सुनकर क्या और सब। पहले इंजेक्शन दिया जाता था इसके लिए कोई रोग का चिकित्सा करने के लिए ऑपरेशन करने थोड़े दिन के बाद में ऐसा हुआ डॉक्टर कहराज भाई आपका नाम क्या है, स्वामी जी कहाँ रहते हैं मथुरा अच्छी जगह है ना, और इतने करते हुए सांस ले बस ऐसी गाढ़ निद्रा में सो गए जो सब वो परेशान हो गया। फिर कहेगा स्वामी जी कैसा लग रहा है, सब ठीक लग रहा है, मालूम नहीं। ऐसे सुख से वो सब कुछ हो गया, ऐसे ही कब हो गया ये पता नहीं। भगवान की लीला कथाओं को चिंतन करने से सुनने से ऐसा होता है, उसमें द्वेष और ये शत्रु भाव, अहं और मम, ये सब कुछ अपने आप कब के धूल गया ये पता नहीं। तदवत निरुक्त मत, जो निरुक्त मति वाले जिनको भक्ति नहीं है वो है निरुक्त। निरुक्त मत यो जतयो अपि जति अप, माने जो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं क्या, नईति नईति नई, बस इसी में निरुक्त मत है। नईति नईति ब्रह्म है नहीं, नहीं तुम ब्रह्म है नहीं, ये सब ये है ब्रह्म नहीं, इसी तरह से रिक्त मत पर। अथवा रिक्त मत में भगवान की भक्ति जिनमें नहीं है वो सब रिक्त मत, निर्विशेष भगवान का रूप है नहीं, ब्रह्म का रूप है नहीं, उनका नाम है नहीं, अरूप अनाम निर्गुण निरंजन अलग इत्यादि वो ये लोग हैं निर्गुण, उनमें कुछ भी नहीं है, भगवान का नाम ही नहीं है। उनका उपास्य का रूप कैसा तुम्हारा है, ज्योतिर्मय, ज्योति कैसी है, लाल है कि पीली है कि कैसी है, काली है, तो कोई रंग ही नहीं है, रंग कहें तो सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई उस ज्योति का रंग कैसा है, काली है न पीली है, पीली हो गई तो फिर एक गुण में आ गया, उनमें क्या गुण है, वो परम कृपालु है तुम्हारे ब्रह्म, नहीं नहीं कृपालु भी नहीं है, तो क्या है कुछ भी। इसलिए सत असत
अनिर्वचनीय
अनिर्वचनीय, सत भी नहीं है असत भी नहीं है, सत असत वो भी नहीं है, क्या है कुछ नहीं। इसलिए ऐसे उपासना करने वाले जो लोग हैं संसार में अधिक लोग यही हैं, वो लोग अपि रुद्ध स्रोतो, अपनी इंद्रियों के प्रवाह को जो रोक देते हैं, रोक तो दिया किंतु हुआ क्या, और प्रबल से उस स्रोत को जो बांध से बांधा था, संयम से बांधा था, उस बांध को तोड़ करके और एकदम चारों तरफ से उसको और डुबा दिया। और संत लोग भगवान की कथा के माध्यम से सुख से ही उसको सदा के लिए दूर कर दिया। सौभरे ऋषि ने कुछ जोर से उस स्रोत को, इंद्रियों के स्रोत को बंद किया, किंतु इतनी बाढ़ बढ़ी, इतनी अधिक बढ़ी कि एक स्त्री से पेट नहीं भरा तो 50 स्त्रियों से शादी, इस तरह से। और सब योगी लोगों के लिए देखा जाता है, विश्वामित्र जी जो काभ्यास कर रहे थे किस लिए, ब्राह्मण बनने के लिए, ब्रह्म, तो हुआ क्या, वहां पर कितने हजार वर्ष तक तपस्या की, पुष्कर मेनका चलती फिरती उधर ही से कहीं से आ गई और उसके पैर के नुपुर बज उठे, बस उनका ध्यान ही था। कितने लोगों का, इसलिए स्रोतो समरणम, स्रोतो गणा समरणम, स्रोत जो है इसको बंद नहीं करना है। मन के स्रोत को भक्त लोग क्या करते हैं, ये जो स्रोत चल रहा है प्रवाह, इसको खुला छोड़ देते हैं, निकले नहीं, उस स्रोत से उस स्रोत को भगवान में लगा देते हैं सेवा, सब स्रोत। जैसे अब यहां पर मैं मेरा है ना, तो ये संसार के विषय को प्रभु का मान करके प्रभु की सेवा में, भक्तों की सेवा में लगा। क्रोध यदि हुआ तो इस क्रोध को किस में लगाया, भक्त विद्वेषी, किंतु जो उत्तम भक्त है उनके लिए विद्वेषी नहीं रहता है, कोई विद्वेषी है ही नहीं है तो लगाएंगे कहां। विद्वेषी तो किसको है, साधक को, साधना से ऊपर पहुंचे उनके लिए ये सब चीजें, वो तो बहुत ऊपर,
भगवान तो उच्च है, उनको कैसे छोड़ा
लिया है ना। सनक सनंदन को वो भगवत धाम में गए और वहां पर भगवान की इच्छा से जय विजय को कुछ दिन के लिए भेजना था इसलिए ऐसे करा, नहीं तो उनको नहीं होता। तो सोतो गण समरणम, नदी का स्रोत आ रहा है उसको बांधो तो जितना बांधो वो तो छोड़ेगा ही। इसलिए हाँ उस स्रोत को के मोड़ को फिरा दो, फिरा दो मैंने बदल दो दिशा,
दिशा को बदल
चेंज कर दो दिशा, अब भगवान की तरफ में उसको मोड़ दो, बस एकदम सहजी अमरणम भजब आपको तम अरणम, जगत के जो शरण्य है इन्हीं के शरण में जाने से, अरणम माने शरण, जो जगत भर के शरण्य है उसी के शरण में क्यों नहीं जाता, उनके जाने से भगवान के भक्त वो आएंगे और तुम्हें सब कुछ को विवेक तत्व इत्यादि देकर के भगवत भक्ति देकर के समूल ही उन सबका नाश कर देंगे और अमम बुद्धि को
पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
अं श्यामलीलछटाधिरभितो मन्दिरकुटेन्दीवरं जगं जागरूपसं विदतसंपत्सम्बरस्य बृन्दारण्यनिवासिनं विरीलसद्दामाधिकं भक्तपराधलस्तु काम मध्य पितामयीं प्रपन्ना दैपायनो विरहकारया सर्वोदु तं सर्वभूतरिभयम् भजन्वरस्य चतुर्थ्यां दो तीन दिनों से ये चतुर्थ जाम का भजन रहस्य चल रहा है। इसमें मनुष्य भजन तो करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, किंतु इसमें दो चीज, एक भजन के लिए जो अनुकूल चीजें हैं उनको अपनाना और भजन के प्रतिकूल हैं उनको छोड़ना। अनुकूल कुछ कुछ करते हैं लेते हैं अपनाते हैं और प्रतिकूल नहीं छोड़ते तो भजन करने से जैसा फल होगा वो नहीं, इसलिए दोनों साथ साथ होना चाहिए। एक प्रतीक है जहां खूब जोरों से हवा चल रही हो तो वहां पर जलाएंगे तो जलेगा, ये असलाई जलाएंगे वो बुझ जाएगा, इसलिए जहां पर हवा नहीं आ रहा है वहां आ सकते जलाना, हवा में जलाना प्रतिकूल है और जहां हवा नहीं है वहां पर जलाना अनुकूल है, तब तो आपका काम जो है वो हो जल जाएगी। बस ऐसे भजन का जो फल है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के चिंतन में मन का लगना, ये भजन का फल है। ये लगते 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 आसक्ति भाव प्रेम होगा तब उनका दर्शन दिया वो सुखी में। इसलिए प्रतिकूल चीजों को अनुकूल परिणाम करेंगे, जितना समय देना है बड़े प्रेम के साथ में करेंगे, किंतु उसके साथ साथ में हमने जो जो चीज बतलाया क्या निर्भय रह करके भजन करना, शोक नहीं होना चाहिए किसी, लोभ न हो, मोह न हो और मैं और मेरा का जो भाव है, मैं और मेरा भाव दो प्रकार का, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अभी अशुद्ध तो ये है, मैं यह शरीर हूं, ये शरीर ही मैं हूं, ये मैं हूं कौन, मैं ये सन्यासी हूं, मेरा नाम है ये, मैं यहां का रहने वाला, मेरे पिताजी का नाम यह है, मेरी मैया ये है, मेरी पत्नी ये है, हमारे पुत्र हैं, मैं मथुरा का रहने वाला, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, मैं पेशकार हूं, मैं डीलर हूं, मैं बनिया हूं, मैं नौकरी करने वाला हूं, मैं पुलिस ऑफिसर, ये जितना सब है ये मैं जो, ये चेंज हो जाता है, ये स्थाई है, और उसमें एक मेरा है, मेरा मैंने शरीर मैं हूं और ये शरीर से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये अशुद्ध है। अशुद्ध एक और मैं है क्या, असल में मैं भगवान का निष्कदास, मैं अजर अमर हूं, ये संसार का जितना मैं और मेरा है इससे अलग मैं, इसके बहुत मिलने पर भी जो चाहते हैं हम सुखी नहीं रहते, इसलिए इनसे अलग मैं भगवान का निष्कदास हूं। अभी चूंकि मैं बद्ध हूं इसलिए जीवन निर्वाह करके हमको साधन करना चाहिए, इसलिए साधन करने के लिए ये शरीर की जरूरत, ये कपड़े की भांति है, इसको सब समय अच्छा रखने की चेष्टा करो जिससे कि मैं भजन कर सकूं, उनको जान सकूं, क्योंकि दूसरे जोनियों में नहीं, बस इसी जोनी में ही भगवान का भजन होगा और कहीं भी नहीं होगा। इसलिए मनुष्य जन्म लाभ करके शरीर को मत समझो जो मैं हूं, एक भगवान ने अनुग्रह करके ये शरीर दिया है, इस शरीर के द्वारा मैं अपने को और भगवान को जान करके सब प्रस्थान करूंगा, इसलिए इसको जो जो चीज की जरूरत है उसको शरीर के निर्वाह के लिए हमको देना पड़ेगा, कुछ काम भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा, किंतु इसी को ही सार मत समझो, सार समझो भगवान का भजन का। एक छात्र जब पढ़ता है घर में जैसा मिल गया खाया पिया, खाना पीना उसका मूल नहीं रहा, उसका मूल है क्या, पढ़ना मूल है, उसके तरफ में देखे बिजनेस जो करते हैं बिजनेस वालों का मूल उद्देश्य, घर में रसोई बनती है बड़े प्यार से खा सकते हैं, किंतु बच्चों से कह दिया घर वाली से कह दिया हम जहां रहते हैं वहीं पर भिजवा देंगे, हमको फुर्सत नहीं है, उसमें कुछ फर्ज हो जाएगा, बिजनेस ठीक नहीं होगा, वहीं पर भेज दें, मैं शाम को आ जाए, मूल उद्देश्य है वो बिजनेस। इसी तरह से मनुष्य जीवन का एकमात्र फल है भगवान को जान, वो कैसे जानेंगे, भजन से, इसलिए शरीर की जरूरत है, किंतु शरीर मैं नहीं हूं और शरीर से संबंधित वस्तुएं ये हमारी सबके प्रभु हैं, मालिक हैं, इसलिए उन लोगों को अधिक शोक मोह भय इत्यादि होता है, किनको, जो कि इस सांसारिक मैं और मेरे के मोह में फंसे, यदि ये थोड़ा सा कट जाए इसको दूर रख करके भगवान का भजन करें तो फल जल्दी से हो जाए। आपने खेत लगाया, बीज बोया, पानी की जरूरत है, पानी की जरूरत, पानी आप कहीं बोरिंग से ले रहे हैं, मेड़ बना रास्ता बना दिया है, पानी वहां तक जाए, पानी कुछ कुछ जा रहा है, उसमें लीक हो गया, कहीं कट गया, मेर कट गई, तो वो पानी सब जाएगा कि नहीं वहां खेत पर? यहां से तो पानी खूब भर रहे हैं और खेत पर पहुंचता नहीं, बीच ही में वो निकल जाता है पानी, और यहां से सोच रहे हैं जा रहा है। इसलिए दो आदमी चाहिए, एक आदमी पानी जहां से निकल रहा है, पानी निकल रहा है कि नहीं कुछ गड़बड़ी है उसको देख, और एक आदमी खेत में पहुंच करके सब जगह पानी में सब पहुंच रहा है कि नहीं, ये दोनों चीज। यदि कहीं लीक हो रही है उसको बंद, यदि कहीं इधर कट गया मेड़ तो उसको ठीक कर, जहां ऊंचाई नहीं जाता है वहां पानी थोड़ा सा बंद करके चढ़ा दोगा तब तो होगा। इसलिए भजन करते समय देखो, यदि ये शरीर में मैं है तो इसमें रोग होगा ही और ये शरीर मरेगा ही, इसलिए भय आदमी को भय किस लिए? आज कोई प्रत्येक आदमी मथुरा में जब निकलता है तो सोच करके घर से चलता है कि भाई रास्ता में कैसे क्या हो रहा है, कहीं वो हल्लड़ तो नहीं हो रही, कोई चाहे ना चाहे ये जरूर आएगा। क्यों? यदि कहीं दंगा हो गया और उसमें मैं पड़ गया तो न जाने क्या होगा, कोई ठीक नहीं। इसलिए ये शरीर है ना, ये थोड़ा सा कहीं हो गया तो ये मर जाएगा, इसलिए सब समय हमारे लोगों को कोई कष्ट ना हो। इसलिए घर वालों को भी कहते हैं, हम ब्रह्मचारी से भी कहते भाई जहाज जैसे झगड़ा झगड़ा फसाद हो मर जाना जरूर, नहीं तो कैसे कुछ कर पा रहा हूं। इस तरह से डर किस लिए होगा? नश्वर चीजें हैं, वो आज न कल खत्म होगी, उसको यदि हमने मान लिया मैं तब तक वो डर रहेगा और उन वस्तुओं का सब समय नष्ट होने का भय। एक चीज ऐसी है जो कभी भी जन्मती नहीं है, कभी भी मरती, कभी भी उसका अभाव नहीं, उसको शोक नहीं है, मोह नहीं है, सब समय आनंद, किंतु हम लोगों ने कभी उसको संग्रह करने की चेष्टा ही नहीं की, समझने की कोई चेष्टा ही नहीं। हमने किस चीज को समझा? रुपया पैसा, धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा, इज्जत, कुटुंबी, ये सब के लिए तो ये जितने ही रहेंगे उतना ही शोक स्प्रिया माने इच्छा होगी कि ये हमको हो जाए, और उसी के खत्म होने पर शोक और मोह, यदि गड़बड़ हो गया कभी तो मोह, आसक्ति लगी हुई है, और ये दिन ऐसा जरूर होगा आजकल परसों पर जरूर छूटेगा, इसको कोई लेकर के रह नहीं सकता है, रहने वाली चीज नहीं। इसलिए भजन करने में यदि आदमी भजन कर रहा है अर्थात बोरिंग से पानी आ रहा है या कहीं से पानी आ रहा है, किंतु पानी जा रहा है कि नहीं ठीक सब जगह, इसको देखना पड़ेगा। वैसे ही ये सब चीजें जितनी दूर होंगी उतना ही भजन ठीक हुआ। इसलिए कल के बतलाने में, कल परसों परसों हमने बतलाया, यदि भजन करना है तो शरीर निर्वाह के लिए अपना जो कुछ करना है करो, किंतु मेरा है ये मतलब करो, तुम किसी का रुपया तुम्हारे पास में आ गया, उसने कहा जी ये रुपया दे रहे हैं इसको अच्छी तरह से रख, 1,00,000 रुपया अमानत रख गया, तुमने समझा जैसे ये रुपया मेरा है और उसको तुम अब व्यवहार करने लग गए, और वो दो दिन के बाद में आया मांगने के लिए, भाई रुपया तो रुपया कहां, अच्छी जो दिया था तो मेरा रुपया। ऐसे ही प्रभु ने ये जो शरीर दिया है, शरीर तेरा है तो वो कैसे ले लेता है? अच्छा ये धन तुम्हारा है तो हाँ हमारा है, ये धन पहले कहां था जो तुमने किया? तो हमारे बाप दादों के समय से ही हमारा बिजनेस चला रहा है, क्यों नहीं है हमारा? तुम वहां से जब आया था जन्म लिया तो तुम्हारे साथ में सब आया था ना, ये सब कुछ नहीं, और जाएगा तो ले जाएगा ना, कुछ भी नहीं। अभी बीच में तू क्यों समझता है? जिसका है उसका समझो, जो प्रभु का है, जिस काम के लिए प्रभु ने दिया है उसको उस काम। तो भय और ये शोक मोह दुख नहीं होगा, और नहीं तो दुख होने सब भजन नहीं होगा, सब भजन गड़बड़, वो पानी दूसरी जगह जा रहा है, एनर्जी हमारी दूसरी तरफ नहीं जा रही है। इसलिए भजन का तरीका ये है, इन आसक्तियों को मोह को दूर करने के लिए ये समझो जी हमारे प्रभु ही एकमात्र हैं। जीव के जितने भी जीव हैं विश्व ब्रह्मांड में वो प्रभु के दास दास हैं, बस यही संबंध सबसे है, तब उसमें कोई परस्पर झगड़ा, ये हिंदू है मुसलमान है क्रिश्चियन है ईसाई है ब्राह्मण ये शूद्र है ये मैं सन्यासी हूं, ये सब भेदभाव सब प्रभु के हैं। इसके नाते भाईचारा का सबके साथ में सबको सम्मान देना, अपना अपना कर्तव्य करके चले जाते हैं, इसमें न शोक का मोह का न कुछ, वो प्रभु का है, प्रभु अपने ठीक समय पर जिसका जो योग होता है वहां पर आज जिसका जन्म है कल वहां पर परसों वहां पर, अपने अपने कर्मों का वो सभी। इसलिए यदि भजन करना है तो इस प्रकार का विचार आना चाहिए, मैं और मेरा जो अशुद्ध है इसको दूर करना, जिसका जितना ही मैं और मेरा अशुद्ध दूर होगा उतना ही शुद्ध रूप में उसका भजन होगा और उसका फल भी बहुत जल्दी। इसलिए कहा ये चीज जो है मैं और मेरा का भाव ऐसे नहीं जाएगा, कहो जैसे मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये मेरा नहीं है, तो और उसको और गहरा वो डूब जाए दलदल में फंस, ऐसा ये तरीका नहीं है। ऐसे तो सभी कहते हैं ये हमारा नहीं है, ये लड़का किसका है, हाँ 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 हंस करके कहते हैं ये आपकी का लड़का है, कहते नहीं कहते आप ही का लड़का है लड़का तो छोड़ दो, तो उस पर सब प्रभु का है, कहने से नहीं चलेगा, सचमुच में उसका वैसा ही व्यवहार। तो ये होगा कैसे भाई, ये भाव आएगा कैसे, ये होगा भगवान की कथाओं को सुनना श्रद्धा के साथ ग्रहण करने से, और भगवान का नाम नियमित रूप में करना पड़ेगा और सब समय उन्हीं के सुनना, लीला कथाओं के द्वारा संतों के समागम से कथाओं के बाद बार सुनने सुनते 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 ऐसे हजार करने। इसलिए किनका संग होना चाहिए, सबका संग है, रिक्त मतयो जतयो निरुद्धा अतिरुद्ध श्रोतोत्तम गणा समरणम भजबाद भाग वासुदेव भगवान जो है कृष्ण है इनका भजन, भजन कैसे कहो, पहले नाम उनका रोग गुण लीला इत्यादि का चिंतन करते हुए उनका नाम संकीर्तन करो, सदगुरु से नाम लेकर के सुख करो आचरण के सही, और प्रतिदिन संतों का संग धीरे धीरे अपने आप अनायास ही वो चीज हो जाएगी। अन्यो अन्य संगोहित विविध विकार आदि भूषा संप्रबुद्ध प्रमुद्ध कंठा अति लोलो स्मर अखिल स्मर मख ललिताद्या नर्मा आठ दोलारण्य अम्बुवंशी हृति रतिमधुपान अर्थ पूजा अति लोलो राधा कृष्ण सकृष्ण परिजन घटनया परिजन घटया सत्यमान राधा कृष्ण का मत ध्यान में मिला, पहला बतलाया था निशांत मिला, दोनों शयन से उठे अपने अपने घर, दूसरा बतलाया प्रातः था, दोनों ने स्नान इत्यादि करके कृष्ण ने गोदोहन करने के लिए चले गए, श्रीमती आदि का सुसज्जित होकर के जावट से नंदगांव में आकर के कृष्ण के लिए रसोई बना और कृष्ण वहां से लौट करके स्नान इत्यादि इसके बाद में हुआ कुर्बानी। कृष्ण ने भोजन किया और उनका अवशेष सब लोगों ने, सखियों और सब लोगों ने किया, और उसके बाद में कृष्ण चले गए गोचारण जाने लगे, बस वहां सब हुआ और ये लोग जाओ। और चतुर्थ जन्म में हुआ, ये लोग गोचारण के लिए कृष्ण चले गए हैं, श्रीमती राधिका इत्यादि भी संकेत के अनुसार में उन स्थानों पर पहुंच गए, कहा राधा कुंड के पास में कुसुम सरोवर इत्यादि है। वैसे एक का नाम दिया और कितने स्थान हो सकते हैं जहां पर भी गोचारण करने के लिए गया, एक ही जगह नित्य नहीं जाए। यदि कृष्ण भांडी वन की तरफ में गए तो सब धरी में पहुंच, जब ये राधा कुंड में जब लीला होती है तो जब गोवर्धन में पहुंचते हैं तो गोवर्धन से उनके सखा लोग उनके साथ में गोचारण, गोचारण करके थोड़े देर के बाद है तो मत गोचारण के बाद में कुछ देर में बच्चों के साथ में गोचारण करते हैं, तरह तरह के खेल को उत्सव करते हैं, मेढकों जैसा चलते हैं, कोयल जैसा कुहकते हैं, बंदरों जैसा एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर चलते हैं, और उनके पूछों को पकड़ करके जैसे बंदर वहां से कूद जाते हैं तो उनके साथ में ये भी उलम्फ देने लगते हैं, से तरह तरह की खेल खेलते हैं। थोड़ी देर के बाद में कृष्ण तट में भी अभी आया, प्यास लगे जरा पानी पियाऊं या कोई बहाना बैठ, और वो लोग थे हमारे सखा अभी अभी पानी पी करते, किंतु योग माया के प्रभाव से वो जो दो मिनट का समय उनको जो मालूम हुआ उसमें कृष्ण ने बढ़ा दिया। इसके बीच में कितने घंटों की लीला हो गई, और जब लौट करके आए तो सखाओं ने सोचा जी अभी कभी पानी पी करके आए, वो जो कहा उसको चिंता ही नहीं थी कि कृष्ण हमको छोड़ करके चले। इसी को कह रहे हैं मध्यान्ह विकार आदि भूषा प्रमुख भव। कृष्ण गोचारण कर रहे हैं किंतु उनका चित्त कहां है, समय पर यहां पर सखियों के साथ में हमारा नहीं, उसी चिंता में गोचारण करते करते सखाओं को छोड़ करके और चले गए कुसुम सरोवर। इधर में सखियां स्नान भोजन इत्यादि करने के बाद में सास इत्यादि के आदेश लेकर के सूर्य पूजा के लिए चले। सूर्य पूजा उनका मूल उद्देश्य नहीं है, कृष्ण रूपी सूर्य उनसे मिलने के, जीव मात्र का अंतिम यही कर्तव्य। कृष्ण से जब तक मिलन नहीं होगा तब कोई भी जीव सुखी नहीं रह सकता किसी रूप में। मिलन मैंने ये नहीं कि दोनों मिलकर के एक हो गए, आज तक कोई भी चीज मिलकर के एक नहीं होती, एक और एक कितना होगा वो दो होगा, एक मैं एक हां दोनों आदमी रहेगा, दोनों में जो हुआ मिल करके बैठे। अभी हम लोग 100 आदमी बैठे हैं, कोई भी चीज किसी चीज में थोड़ा सा इधर, ये सबसे भजन राज्य में ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। कुछ लोगों का ये विचार है कि हम जो हैं ब्रह्म हैं और भगवान से मिलते हैं कैसे, जैसे दूध और पानी मिल जाता है एक हो जाते हैं, या पानी में पानी मिल गया एक हो गया, किंतु यह धारणा गलत है। पानी में पानी मिलकर के कभी एक नहीं होता, एकाई नहीं होती, एक फुल ब्रिम पूरा भरा हुआ ग्लास है और उस ग्लास में थोड़ा सा एक बूंद भी पानी डालो तो वो पानी कहां जाएगा, वो तो भरा हुआ है ना, वो गिर जाएगा, तो एक कहां हुआ, जहां गिरने का नहीं वहां पर बढ़ जाता है, ग्लास में तब जगह नहीं इसलिए गिर गया, किंतु मान लो कि ग्लास बड़ा है उसमें पानी और डाल दो
तो मिलकर के वो बढ़ जाता है ना, एक नहीं होता है, ऊपर से आदमी कहता है जे एक हो गया, उसकी संख्या बढ़ जैसे कि एक आदमी और आया इसमें बैठ गया बढ़ गया। ऐसे भगवान में जब जीव मिलता है तो जैसे हम यहां पर बैठे हैं और लोग सब आकर के सुनने लगे, इसी मिलने को मिलन कहा गया। भगवान में कोई जीव मिल करके एक हो जाता है वही भगवान हो जाता है, ब्रह्म हो जाता है, जब धारणा गलत। इसलिए जीवों का प्रधान उद्देश्य है भगवान के साथ में योग युक्त होना। इसीलिए गीता में कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग कहा गया। कर्म के साथ में भगवान का योग, ज्ञान के द्वारा जीव का भगवान के साथ में योग, और भक्ति अर्थात प्रेम के द्वारा जीव का और भगवान का योग, ये तीनों चीजें एक नहीं है, कुछ अंतर है। इसलिए प्रेम के साथ में भगवान के साथ में जो जीव का संयोग है, मिलन है, इसमें जीव भी अलग रहता है भगवान भी अलग रहते हैं, किंतु दोनों में मिलन का आनंद होता है। और यदि दोनों मिलकर के एक ही हो जाए, जैसे एक चींटी गई मधु खाने के लिए, मधु पीने के लिए, और वो मधु में जाकर के लिपट करके मधु बन गई, मधु बन गई, अब वो पी रही है मधु, उसका आनंद आ रहा है कि नहीं, क्या उसको कैसा अनुभूति हो रही है, मैं खुद ही मधु हो गई, उसको उसको पता होता है, ज्ञान होता है कि मैं मधु बन गई, लिपट करके उसके जितने पैर पैर सी सब कुर्सी में लतर बदर हो करके, और आदमी चाटते समय उसको भी चाट गया, जो खाएगा उसको आनंद हो, अब उसको पता नहीं। ऐसे जो लोग ये सोचते हैं कि ब्रह्म में मिलकर के मैं ब्रह्म हो गया ना, यह गलत धारणा, उसमें आनंद ही नहीं है। अब चींटी को क्या आनंद हुआ, ऐसे यदि आप लोगों में से कोई एक ब्रह्म हो गया तो उसकी स्थिति का तो रहा ही नहीं, अब उस प्रेम में जो आनंद है उसको अनुभव कर। ऐसे जीव मुक्त होकर के साधन भजन करके जब कृष्ण से मिलेगा और उसमें जो सेवा का जो आनंद होगा, इस जगत के आनंद से कोटि कोटि, थोड़ा सा यदि आस्वादन मिल जाए ना तो अभी सब कुछ हो जाता है। इसलिए मुक्त महापुरुष लोग सुखदेव गोस्वामी, नारद जी और सब लोग, अभी भी जितने सब, थोड़ा सा आनंद मिलने से और कहेंगे से चलो तुमको खूब सुंदरी लड़की से शादी करके लाख रुपयों का घर दे रहे हैं और तुमको ऐसा बिजनेस दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वो मानेगा क्योंकि उसमें उसको आनंद, इसे जब संपूर्ण रूप में जब उसको आनंद मिलेगा, इसलिए कृष्ण के मिलन में ही आनंद है। इसी को आनंद कर, इसी को प्रेम कर। अब राधा और कृष्ण दोनों ही, राधा की ये सखियां कृष्ण के सखा हैं, तो वो सब लोग कृष्ण से मिलने के लिए चेष्टा करके और मिलते हैं, और उस मिलन में विविध विकार आदि भूषा, विविध प्रकार के विकार होते हैं। विकार क्या, तरह तरह के नवरस भूषण भुरजा वली के ना,
नवरज भाव,
नौ प्रकार के जो रस हैं, वो एक एक तरह के आस्वादन, एक एक तरह के वो एक एक भूषण है। मानो चैतन्य महाप्रभु जी कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके अष्टसात्विक विकार हो रहे हैं, एक साथ में आंखों में आंसू आ रहे हैं, एकदम जड़वत हो गए, पुलक होने लगा, रोमांच हो गया, मुख कभी लाल कभी पीला कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है, तरह तरह के भाव उसमें आ रहे। ये सब क्या है, प्रेम के, राधा कृष्ण के परस्पर मिलने में प्रेम है, प्रेम की वजह से विकास होता है। जैसे एक बच्चा है, एक उसका मित्र है, या एक लड़का और लड़की, दोनों अभी छोटे उम्र के, दोनों में बड़ी प्रीति है, घर वाले उनको मिलने नहीं दे रहे और वो मिलना चाहते हैं, उस समय जब दोनों मिलेंगे ना, किसी चांस से मिल गए तो उनको कितना आनंद होगा, मुख में कैसे कैसे भाव आएंगे। जो समझने वाला जो कवि होगा ना, रसिक होगा, वो फील करेगा, वो फील करके गदगद होगा, अरे ये देखो तो कैसे कैसे भाव, आंखें दोनों की भराई दबदबा, और कितना आनंद इन लोगों को है, शुद्ध बुद्ध भूल गए, कौन देख रहा है कि नहीं, अब ये भी भूल गए। तो जहां पर उन लोगों का मिलन होता है, कितने प्रकार के भाव उनके आते हैं, विविध प्रकार के, दोनों प्रमुग्ध हो, प्रकृष्ट रूप से मुग्ध हो जाते हैं। अब जैसे देखो कैसे मुग्ध हो, कृष्ण ने सोचा गोपियां हैं, दोपहर का काल हो गया, करीब करीब 11:30 बजे, 11:30 बजे करीब की, 11 बजे से लेकर के करीब करीब 3:30 बजे तक, 3 बजे तक का मध्याह्न मिला, करीब करीब ये 3 घंटे से भी अधिक का, ये लंबी, और रात की लीला नैश लीला ये बड़ी होती, और बाकी सब आवश्यकता अनुसार छोटी बड़ी जामे होती, लीलाओं का समय होता है। अब इस समय में कृष्ण समझ गया आने का समय है, अपने सखाओं को जोग माया से मोहित कर, जब कृष्ण उन्हीं के बीच में है, खेल रहे हैं, या थोड़ी देर के लिए यहां पर गए, बस अपनी खेल में लग गए, और कृष्ण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इधर कृष्ण ले लिया उनको, मधुमंगल जी को अपने साथ, दोनों लेकर के मधुमंगल से उन्होंने कुछ काना खुशी, मधुमंगल ने इनका वेश बदल दिया और अपना वेश भी बदल, वही पहनाव तो वही था, उन्होंने कर दिया क्या कि कहीं से खड़ाऊ उनको मिल गई, खड़ाऊ पहन गई, जो माने ही प्रस्तुत किया, और छात्र बटुक बन गए, बटुक छात्र मैंने पढ़ना वाला विद्यार्थी छात्र बन गए, ब्राह्मण, चोटी को बेस अच्छी तरह से बांध ली, घोघराव बालकों बालों केशों को थोड़ा सा ढक लिया किसी किस तरह, और हाथ में एक बगल में पुस्तक ले, लठिया ले, और शरीर ऐसा ही ब्राह्मण बालक जैसे बन करके और वहां पर पहुंच गए। सखियां वहां से देख रही हैं, ललित राधा इत्यादि जी चली गई हैं राधा कुंड की तरफ, सूर्य पूजा होता है कहां, सूर्य कुंड, उस समय का स्थान आज जैसा नहीं, स्थानों की दूरी अब जैसे नहीं मालूम होती, अभी हम 5 कदम चलते हैं तो थक जाते हैं, पहले के लोग कितने कितने बड़े होते थे, अभी जगन्नाथ अभी आया था ना, ये दरवाजा उसको लग जाता है, अभी में, और यदि रेवती के पिता रेवत जी जिस समय आए थे वो कितने लंबे थे, 7 साल से भी अधिक लंबे, आज से हमने अपने बाबा को देखा तो हमसे 1.5 हाथ लंबे और ऐसे मोटे, 2 भैंसा खूब बड़े तगड़े लड़ रहे थे, खूब बड़े तगड़े, और सब लोग डर रहे थे, वो लड़ते ना पीछे हट कर क्या होगा, ऐसा मारेंगे ना, जब तक वो दोनों में से कोई एक नहीं मर जाएगा तब तक सहज ही नहीं हटते, तो वो आए टेढ़ी मेढ़ी उनकी लठिया थी वैसे, और एक हाथ से उठा करके ऐसे मारा एक को जो वहीं पर बैठ गया, अब दूसरा वहीं से भागा। खाते क्या थे, 1.5-2 किलो महुआ भिजाकर, महुआ होता था, महुआ जानते हैं, आ एक भी आप लोगों को हजम नहीं होगा, उसको घी में या तेल में भून दिया और उसको रोटी बना करके या ऐसे ही 1.5-2 किलो ऐसे ही खा गए, और ऊपर से 2-3 किलो दूध पी गए, 2-4 किलो में उनका कुछ भी नहीं होता था, ऐसे वो लोग वहां से 50 मील कचहरी उस समय थी, वो लोग वहां जाते थे, वहां तक
आकर के दोपहर तक घर में आकर के अपना भोजन करके तैयार हो गया।
सनातन गोस्वामी आज 400 वर्ष पहले ही वृंदावन से चलते 14 मील दूर गोवर्धन की परिक्रमा करके 14 मील और 14 मील यहाँ आकर के फिर यहाँ से 5 मील 6 मील वृंदावन में पहुंच जाते थे दोपहर। हम लोगों से संभव होगा? इसलिए उसने का बल, उसने का शरीर, लंबा चौड़ाई, ये आज के समर्थन। इसलिए सूर्य कुंड, राधा कुंड और ये कुसुम सौर सब एक ही थोड़े में ही समझिए उस समय। तो वहां पर वो सूर्य कुंड की तरफ में जा रहे हैं और सखियां आ गए यहां पर, कहां पर ये कुसुम सौर किस लिए आएंगे? आने का मतलब क्या? कृष्ण कहीं आ रहे हैं, कहीं विपक्ष में ना चले जाए। विपक्ष की सखियां हैं, उनके तरफ में चले जाए, इसलिए उनको इधर से उधर डायरेक्शन दे करके, यदि वहां पर फंस भी गए तो वहां पर निकाल करके वहां पर लाना है, इसलिए वहां है। यहां पर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इतने में रूप मंदिर आ करके इशारा से समझा दिए, जैसे वही पहुंच गए। यहां पर कुछ विलास इत्यादि लीलाएं हुई, फूल चुनने का, ये सब यहां से चुन रही है और अपना काम कर करके वहां पर पहुंचे, इशारा कर दिया आप वहां पर पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा? बच्चे, ये तो बच्चे भी बंद करके गए हैं, वहां देखा जे जटिला जी अपने बहू बधू को लेकर उपस्थित होकर के खोज रही है, कोई ब्राह्मण यहां पर मिल जाता तो मैं सूर्य की पूजा करा देती बहुत। सूर्य पूजा की इसलिए उस समय तक सूर्य की पूजा बहुत अधिक होती थी, अभी भी हम लोग भी सूर्य को पानी देते हैं, स्नान किया उनको पानी देते। क्यों पानी देते हैं? क्यों और कोई चीज क्यों नहीं देते? आग है ना, आग में ताप होती है, हमारे अंदर में भी ताप है। यदि सूर्य को हम जल देंगे ना तो उनका ताप होकर के हमारा भी ताप, इसलिए देते हैं। इस ताप से भयानक कोई चीज नहीं है, इस ताप की वजह से ही कितने रोग होते हैं, इसलिए सूर्य को पानी देते हैं, सूर्य की उपासना का। ये इधर क्या देख रहा है? इधर देखता क्यों नहीं? बैठो चुपचाप। इस तरह से सूर्य की पूजा के लिए वहां, क्यों? सूर्य सब कुछ देखते हैं, धनु धन्य भी। गायत्री मंत्र में पहले सूर्य की उपासना ही समाप्त होकर और उन्हीं से ही सब कुछ पाने की लालसा करते हैं और उन्हीं को ही भगवान समझते हैं, सूर्य भगवान। विशेष करके पंच उपासना में वो लोग ये नहीं जानते हैं कि ये शक्ति कहां से उनमें आती है, उन्हीं को मूल समझ लेते हैं। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्त सूर्य देवी विचक्षुरातम, ये नहीं समझते, ये शक्ति कृष्ण सूर्य ये सबका। किंतु लोग समझते हैं, जैसे यहां का नगर का मजिस्ट्रेट जो कुछ हुक्म देता है ना, मारो उनको, ये भग नहीं रहे, बस मारना अंधा ढूंढ लिया, उनको देख करके भगेंगे सर, चोर डकैत ये सर। वो और किसी से उतना प्रधानमंत्री से नहीं डरेंगे क्योंकि उनका कोई संबंध ही नहीं है, जानते ही नहीं है, या राष्ट्रपति से नहीं डरेंगे क्योंकि जानते ही नहीं, ये जानते हैं कि ये जो दरोगा यहां का है, यही मालिक यहां का है या ये मजिस्ट्रेट, सभी इसका ऑर्डर करता है। उसी तरह से साधारण आदमी सूर्य को, गणेश को, दुर्गा को और ये सोपासक विष्णु है और शंकर जी, इन्हीं की उपासना करते हैं साधारण में फल की प्राप्ति। तो सूर्य की पूजा करने से धन धान्य गायें, वो तो गोल वाले हैं, धन धान्य इत्यादि बढ़ेगा, गोधन ही उस समय का धन था, गोपों के लिए धन धान्य बढ़े। और हमको लड़का नहीं, हमको नाती नहीं है, हमको नाती भी हो, इसलिए जटिला जी अपनी बहू से सूर्य पूजा के लिए आग्रह करके भेजे। उन लोगों को इसी का बहाना मिल करके मौका मिलता है, इसी से कृष्ण से इसी तरह से मिलने का सुझाव। अब वो वहां पर पहुंच करके खोज रहे, इतने में ये दोनों छात्र ब्राह्मण उन्होंने कहा आप लोग कौन हैं? हम लोग ब्राह्मण बालक। कहां जा रहे हैं? मथुरा जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? हमको अभी समय नहीं है, अभी आप जाइए, हम लोगों को बहुत जल्दीबाजी है। हमको गर्गाचार्य की कन्या ने कि गर्गाचार्य के कोई संबंधी ने हमको निमंत्रण दिया है, आज उपवास होंगे, अभी तक उनके घर में उपवास हो, आज वहीं पर हमारी दीक्षा है, आज दीक्षा लेने, नहीं तो हम लोगों को पाप लगेगा, समय पर नहीं पहुंचेंगे, वो लोग भी नहीं खाएंगे, और वहां पर कुछ कार्य है, हम लोग ज्योतिष भी जानते हैं और ये पंडिताई का कार्य कराते हैं, पूजा करा देते हैं, सब लोगों को पूजा कराते हैं, वहां पर भी कुछ पूजा है, जमुना जी की पूजा करा करके या और कोई पूजा होगी वो पूजा करा करके हम लोग भी प्रसाद पाएंगे, इसलिए हमको जल्दी जाना है। बेटा एक बात पास तुम लोग ब्राह्मणों हमारी भी पूजा करा, हमको अभी समय नहीं है, कहां ना समय नहीं। वो जितना वो प्रार्थना करते हैं उतना ही है, दर बढ़ा रहे हैं। अंत में वो पैरों में गिर गए, देखो हमारी ये बहू है, उनकी बहू है, कहीं बाहर नहीं जाती, और ये सब सखियां इसकी सहेलियां हैं, इसलिए तो बेटा है, हम तुमको जो दक्षिणा होगी हम सब दक्षिणा दे जाएंगे। मधुमंगल लड्डू भी साथ में ले आए हैं, भोगों को ठाकुर जी को देना पड़े, कहां प्रचुर लड्डू हम लोग खाए। अब उसके मुख से पानी निकलने का, कृष्ण को कहता है अरे भाई भाई करके चलो फिर पीछे वहां पर पहुंच जाएंगे। तो वो जटला जी इसकी अधिक सिफारिश करने लगे, ये सुने इसको तो लोभ नहीं है, अब बड़ा तेजस्वी लड़का है, श्यामू तो है किंतु बड़ा पंडित मालूम पड़ता है, ज्योति भी मालूम पड़ता है, अब चलो इसको किसी प्रकार से मना जुना करके इसको मतलब आदि भाई जल्दी से संक्षेप में करा देना, कोई बात नहीं तब तक वहां पर चल चलेंगे, वहां पर कह देंगे कि किसी काम से अटक गए, तुम मान जाओ दक्षिणा भी भरी पूरी मिलेगी, यहाँ बड़े घर की लड़की और बुद्धि मालूम पड़ती है, बहू को देखो ना जब कैसा श्रृंगारती है, कितनी धनी मालूम पड़ती है, ये साधारण घर की रानी की जाती है, इसलिए जरूर यहाँ पर दक्षिणा हम लोगों को मिलेगी। तो तुम ऐसे ही गड़बड़ करता है, हम एक बात करेंगे, तुम यदि पूजा वूजा भी हम कराएंगे, पूजा का दक्षिणा कोई हम तो नहीं लेंगे, तुम भी मत लेना, लोग मत करना है, तब तो हम रह जाए। अच्छा तो ठीक है, मैं नहीं, बिना दक्षिणा का ही हम सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा जैसे हमको समय नहीं है किंतु हम 5 मिनट के लिए उसमें समय दे देते हैं, जल्दी कीजिए किंतु देरी हम नहीं कर रहे, जल्दी से आप चलिए और उसको बहू को ले चलिए, सखियों को भी ले चलिए, और हम लोग अभी चलते हैं, अभी सरोवर में हाथ पैर धोकर के आचमन कर करके पवित्र होकर के आते हैं, तुम भी उनको पवित्र करा करके। और वहां पर पहुंच करके राधा जी को देख करके इनको कितने भाव विकार, वही बात विकार है ना, संग उदित, संग से उदित जो विकार है, विविध विकार आदि भूषा अष्ट सात्विक विकार इत्यादि सब आ गए। मधुमंगल बीच में कृष्ण को हिलाता है, काम करना है ना, इसलिए वो वामोत्कंठा अति लोलो, यह वाम भाव उनमें भी इनमें भी, घुघुट खेच करके बैठी है राधा जी आसन के ऊपर में, सूर्य के लिए पूजा की जो फूल होते हैं वो लाल फूल होना चाहिए, लाल लाल फूल सब
जवा कुसुम,
वो तो दुर्गा के, प्रत्येक देवता के लिए भी अलग अलग फूल, अलग अलग वस्त्र, अलग अलग प्रसाद, ये सब होना चाहिए। हमारे ठाकुर जी राधा कृष्ण गोविंद जी हैं, रामचंद्र जी हैं, नृसिंह जी हैं, माने जितने अवतार हैं चलो, इनको सफेद और सुंदर मधुर गंध वाला ये पश्चात देशों के फूल जिसमें सुगंध नहीं है वो सब नहीं, या अत्यंत लाल फूल है ये नहीं लगता, विशेष करके ये फूल बेचने वाले लोग हैं एरंड का पत्ता रख करके उसमें रखते हैं। एरंड के पत्ते में, एरंड माने रेणी, उसमें इतना तीव्र गंध होता है जो उस फूल का गंध उसमें दब करके खराब हो जाता है ना? इसलिए वो सब नहीं गवाना। खूब सुंदर मधुर थोड़ा थोड़ा गंध होना चाहिए। सफेद हो तो बहुत अच्छा, नहीं गुलाबी हो या हल्का सा पीला हो तब तो चाहिए। अधिक लाल रक्त फूल नहीं चाहिए, वो तामसिक देवताओं के लिए होता है। सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के सूर्य पूजा के लिए जो उचित है वो वहां पर लेकर के वहां पर सब लोग। अब कृष्ण जी पुरोहित बन करके और उनको मंत्र पढ़ा, मंत्र क्या पढ़ा रहे हैं? पहले तो आसन शुद्धि, जैसे अर्चन होता है ठीक ऐसे ही आसन शुद्धि किया। आसन शुद्धि के बाद में आचमन, किसको? जिसकी पूजा रहे सूर्य को, स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम कह करके। सूर्य का वही नाम जो कृष्ण का नाम, दोनों एक अर्थ है। जैसे
मित्र,
ओम मित्राय आगमनम कुरु आगमन। यहां पर मित्र मैंने किसकी, कौन पूजा कर रहा है? कर्क पूजा करा है कृष्ण ना, किससे पूजा करा रहे हैं? राधा। अब राधा जी कह रही है मित्र, हमारे मित्र, मित्र माने सरकार। अब कौन? ऐसे ही पूजा में जितने भी नाम हो रहे हैं वहां पर मित्र ही प्रधान है। इदम आचमनम ओम मित्राय नमः। यहां पर जो कुछ माने अच्छे फल भी किसे लेना है? ओ मित्र हमको ये फल दीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए मित्र, माने सूर्य प्रसन्न हो। यहां पर वो कह रहे हैं मंत्र किसे पढ़ा रहा है? राधा जी से। मित्र जो आप उपस्थित हुए हैं ने? अब हमारा यही आपके प्रति हमारी नित्य काल के लिए सेवा की भावना हो और हमारा हमारी प्रसन्नता हमारी अभिलाषा पूर्ण। अभिलाषा क्या है? सूर्य से मिलने की अभिलाषा है ना, क्या अभिलाषा है? हमारे सखा मित्र से मिलने की लालसा है, वो पूर्ण हो जाए। वो कहिए आह कितनी भावुकता से और कितना एकदम निविष्ट होकर के ये मंत्र पाठ करता है, अद्भुत। तो ऐसे मालूम होता है कि ये उसमें प्रतिष्ठित होकर के ये मंत्र करता है और बड़े गंभीर होकर के कृष्ण ये सब मंत्र पढ़ा रहे। मधुमंगल बीच बीच में हंसता भी है, भावना भी आती है और वैसा ही अनुरूप अनुकूल कुछ बात का ललिता विशाखा इत्यादि सब समझ रही है। इसलिए जबकि सर्वात्मक अंत में पुष्पांजलि होती है, जब पुष्प पूजा हो गई ना होने के बाद में पुष्पांजलि, पुष्पांजलि माने क्या? हम लोग जो करते हैं यहां पर ठाकुर जी को पूजा अर्चन करने के बाद में अंत में पुष्प हाथ में ले लिया, हमारी आत्मा तक हमारी हमारा शरीर तन मन वचन सब आपके चरणों में। जैसे श्रीकृष्ण राधा कृष्णाभ्यम इदम पुष्पांजलि ऐसा वहां पर ओम मित्राय, हे मित्र हमारा तन मन वचन धन जो कुछ भी है आपके चरणों में समर्पित करते हैं। यह बोलो मंत्र, वो मंत्र बोल रहे हैं, पुलकित और गदगद हो रही है। सचमुच में आज हमारी अभिलाषा पूर्ण हो गई और हमारा सर्वस्व हो गया, कृष्ण के चरणों में हमने अपने को संपूर्ण कर दिया। और वो मंत्र कराने वाले ही हमारे सखाएं ये तो समझ रहे हैं और वो करे आज सूर्य प्रसन्न हो रहे हैं और बाई चांस युद्ध में सूर्य की किरणें बड़ी सुंदर रूप से आ रही और जैसे मालूम पड़ता है जी सूर्य ये भी बड़ी प्रसन्न हो रही है। उसने देखा जी अब पुष्पांजलि तो हो गई तो उसने बहू के अंगूठी का, जैसे अंगूठी खोलो तो अंगूठी ये पांचों अंगुलियों में है, दसों अंगुलियों, एक अंगुली से इसकी निकाल करके अनामिका की इसको वो निकाल करके निकालने लगी। कृष्ण कहा नहीं हम लोग नहीं ले, मैं कभी भी कोई दक्षिणा नहीं लेता। दक्षिणा कहते हैं किसको? दक्षिणा माने दक्षिण किसको कहते हैं? ये है क्या है?
उत्तर।
सूरज की तरफ में खड़े हो जाओ, पूरब की तरफ में, पीठ हो जाएगा पश्चिम, मुख किधर हो जाएगा? और बाएं हाथ हो जाएगा उत्तर, और ये किधर हो जाएगा? दक्षिण। असल में कहते हैं अनुकूल को दक्षिण, अनुकूलता, इसको कहते हैं दक्षिण। दक्षिण होना माने अनुकूल होना। हम जो चाहते हैं उस चीज की पाने का नाम, उसके लिए जो अनुकूल है। जैसे कि मास्टर से हम पढ़ने जाते हैं तो दक्षिणा क्या हुई? उसको जो चीज की जरूरत है, वैसे जरूरत चीजों को देते हैं तो वो पढ़ाता है, उसको धन इत्यादि चाहिए। अब कृष्ण को अनुकूलता माने दक्षिणा क्या चाहिए? रुपया पैसा चाहिए। उनकी अनुकूलता मिल गई है, उनको दक्षिणा, उनको आगे ऐसे ही मिल गई। कैसे मिल गई? वो दोनों का मिलन हो गया, उन्होंने हंस दिया, बस भीतर आड़ से देख करके ही, घूंघट के आड़ से उन्होंने देखा, ये चीज मिल गई, बस उनकी हो गई। अब मधुमंगल सोच रहा है ये अंगूठी तो लिया नहीं, वो कहता है कि देखो भाई, कृष्ण थोड़ा सा आगे बढ़ करके जाने, हमको जल्दी जाना है। लड्डू देने लगी तो उन्होंने कहा कि मैं लड्डू भी नहीं देता दूसरों का, मैं तो ब्राह्मणों के अतिरिक्त दूसरे किसी जाति का लेता है, बहाना करना था, आप लोग ब्राह्मण है तो नहीं, क्या है तो हम लोग, हमारा आज ब्राह्मण के यहां निमंत्रण है, वहां पर ऋषि लोग वहां पर आएंगे, वहां पर गार्गी जी भोजन बनाएंगे और वहां पर हम कुछ नहीं। कृष्ण आगे बढ़ गए, मधुमंगल कहता है देखो उनसे बुढ़िया जसना, दक्षिणा दे करके संकल्प करके उसको रखने से घर में पाप होता है। जो चीज संकल्प कर दिया ना, उसको यदि रख लो तो क्या होगा? इसलिए तुमने तो संकल्प करा दिया है ये अंगूठी को और ये लड्डुओं को भी, और उसने तो दिया नहीं, अब क्या होगा? वो अपने घर में ले जाएगी तो अब क्या करें? वो लेता नहीं, दूसरा कोई ब्राह्मण है, उप ब्राह्मण, उसको दे दो। उप ब्राह्मण कौन? मैं भी तो ब्राह्मण हूं, उसी का साथी हूं, जरा हमसे अधिक जानता है, किंतु हम उसकी सहायता देखो ना कितनी की, पानी ला दिया, आचमन करा दिया और सब हमने काम किया, इसलिए हमको वो दक्षिणा दे दो, नहीं तो तुम्हें ये संकल्प की चीज रखने में, दक्षिणा रखने में तुमको पाप होगा, तुम करेगी ही क्या? अब दे दिया संकल्प, वो दे तो सोची जिससे ये ठीक ही कह रहा है, बस अंगूठी दे, अंगूठी को अपने बांध लिया, पटके के कोने में बांध लिया, छोड़ो और खूब एक गांठ, दो गांठ, तीन गांठ खूब से लगाया और ले करके कमर में बांध करके और उसको भी नीचे घुसा दिया और लड्डू जो मिला उसको भी एक और गमछे में बांध दिया अच्छी तरह से, उसको दोनों चल पड़े। इधर दोनों जा रहे हैं ना, बैमो उत्कंठ था और अब जो मिलन था, अब वो थोड़ा सा विरह होना लगा, इसको कहते हैं विप्रलंब भाव अथवा वियोग। वो तो नहीं कुछ समझ रही है, सखियां समझ रही हैं, राधिका जी समझ रहे हैं, कृष्ण समझ रहे हैं, अब ये मिलने के लिए और उत्कंठित, यदि मिले 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 और उसी समय में कोई बाधा आ गई ना, तो फिर क्या हुआ? वहां पर तो मिल नहीं सकते क्योंकि वहां पर विजातीय है, इसलिए चले गए, ये भी चली गई, किंतु दोनों की दोनों चिंता कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ये लोग सखाओं के पास में पहुंचे, वो जावट में पहुंच गए। जब ये सखाओं के पास में कृष्ण पहुंचते हैं, सखा लोग बड़े देख करके आनंदित हुए, मैं आगे जाऊंगा, मैं आऊं जाऊंगा, बस कृष्ण की तरफ में सभी तक सब सखाओं को बड़ा भारी था। कृष्ण उनसे मिले, मिल करके बैठ गए, दोपहर हो गया था, बच्चों ने अभी कुछ खाया नहीं, कृष्ण नहीं है तो कैसे खाएं। अब माताओं ने जो सिक्के भेज दिए हैं उनको पेड़ों से निकाल करके उतार करके सभी लोग गोल मंडली में बैठ करके अब भोजन करने बड़े आनंद के साथ में एक राउंड दो राउंड तीन राउंड हजारों राउंड बैठ गए। सभी लोग देख रहे हैं ये कृष्ण के मैं निकट जो पास बैठ रहा वो देख रहा कि सामने जो बहुत दूर है वो भी देख रहा कृष्ण के सामने, जो पीछे है वो भी देख रहा कि मैं सामने पास हूं और सब परस्पर परस्पर खा रहे। मधुमंगल जी बड़े गंभीर होकर के लड्डू जो था वो उसको नीचे कर दिया दोनों पैरों के बीच में और ऐसे फूट करके बैठ गया और उसको छोड़ नहीं रहा। और वो जो अंगूठी वाली है कान उसको भी भीतर में लेकर के छिपा करके दबा करके सखाओं को गंध मिल गई, लड्डू का गंध मिल गया और इनको इनके पास में कुछ है समझ गए। बलदेव जी ने पहले उन्होंने और सीदाम पशुदाम सोवर लवंग इत्यादि सबको इशारा कर दिया ये आज ये बटुक के पास में कुछ है खाने का माल कुछ है कहीं से मिला है बस सब लोग खा रहे हैं पी रहे हैं। एक लड़का आकर के उसको धक्का दे दिया मधुमंगल को तो थोड़ा सा ऐसे उचक गया, इतने में दूसरे ने उसका आंख बंद कर दिया, तीसरे ने कुछ और कर दिया, एक ने उसकी लठिया ले ली, एक ने नीचे से वो लड्डू का पोटने निकाल लिया और तीसरे ने वो गांठ से जबरदस्ती करके अंगूठी उंगूठी सब ले। अब तो बेचारा देखा जाए अकेले अब वहां पर लाखों वो सब अब ये ऊं करके रोने लगे। कृष्ण उसको समझाने और निकाल करके उपवी कदाचा कठर अभी मैं तुमको दुरुस्त करता हूं जने निकाल करके ऐसा करते अभी संपात मैं अभी तुमको संपात देगा। कृष्ण कहे खबरदार ऐसा मत करना है कहिए सभी मर जाएंगे तुम अभी संपात देगा कहने आज जरूर दूंगा अभी मैं जा रहा हूं नंद बाबा के यहां नालिश करूंगा और वो दिन नहीं सुनेंगे तो मैं चला जाऊंगा अभी मथुरा अभी कंस के पास में पहुंच जाऊंगा अभी देखें वहां से सिपाहियों को लेकर के इनको पकड़ करके दुरुस्त कराता हमारा माल ताल सब ले लिया हमारा ये अंगूठी और ये सब चीज इसको ले लिया और उधर बच्चे सब उनको दिखला करके उन्हीं का चीज खाने लगे। अब ये बिगड़ करके वहां से चला थोड़ी देर के बाद देखा जी कृष्ण वो चला गया थोड़ा दूर तो कृष्ण पास पर पहुंच करके उसको समझा बुझा करके लड्डू ट्रॉफी थोड़ा सा मना करके वो सब देकर के उसको शांत। इसके बाद में तीन प्रहर हुआ और तीन प्रहर होते ही गैयाओं को के लिए बंसी बजा श्यामली धौरी कालिंदी पिसंगी गंगे इत्यादि नाम पड़ता लाखों गायें जो जहां थी बस एकदम सुन करके नाम और सब दल के दल सब वहां। कृष्ण ने अपनी मणिमाला निकाली और उसके ऊपर में ये गिन करके गाय को एक गाय श्यामली नहीं आई ये श्यामली नहीं आई लाखों गांव में 9 लाख तो नंद बाबा की और ऐसे ही लाखों कोटि धेनु में उसमें श्यामली नहीं आई बस फिर से श्यामली नाम चाह और श्यामली जहां थी वहीं से और एकदम कृष्ण के सुन पाए। अब गायों का गणना पूरा हो गया अब वहां से वो बजाया सिंगा और सिंगा बज करके मैंने अब कुछ करो गायों को पानी पिलाया गायें एकदम खा पी करके जैसे पानी पीने से पेट भर जाता है वैसे उनका पेट भर गया और वो धीरे धीरे चलने लग गए। अच्छा इधर में कुछ मैंने छोड़ दिया वो तो एक दिन की लीला है सूर्य पूजा का। कभी कभी यह सूर्य पूजा केवल रविवार को होगा और दिन नहीं होगा ने? 7 दिन में एक बार रविवार के रविवार सूर्य पूजा और दिनों की लीला उसके लिए कह रहे हैं डोला मैंने कदम्ब के डार में लगा दिया। कदम्ब की डार में वो क्या होता है दान
झूला डारो कदम की डार
सखियां आशा झुलानी। पहले कृष्ण को झुलाया, राधा जी को झुलाया, इसके बाद में सखियों को झुलाया, इसके बाद में कृष्ण को झुला करके राधा जी को बैठा दिया। अच्छा, बैठाने में भी कैसे बैठाया, एक तरफ कृष्ण और एक दूसरी तरफ से श्रीमती राधिका बैठा दिया, दो डंडे लगा दिए, डंडों में एक और डंडा इधर से इधर से दूरी पर कुछ थोड़ा सा, एक उधर से बैठ गया है इधर से झुलाने। अब जब इधर से चलता है ऊपर में खूब जोर से फेंका है तो कोई एक नीचा हो जाता है कोई ऊपर, और फिर जब इधर से आता है ना एक नीचा कोई ऊपर, और उस समय में जब नीचे से ऊपर से नीचे उतरता है तो कैसा होता है, कभी चरखी चढ़ा है, चरखियां होती है बहुत, उस पर चढ़ने से या विमान में जब चढ़ो जब नीचे उतरता है या ऊपर चढ़ता है ना तो मालूम है कुछ खाली हो गया और कुछ फिर भर गया, तो ऐसे ही लीला करना सब सखियों के साथ में। ढोला अरण्य अम्बू, अरण्यम्बू, अरण्यम्बू माने उसमें जो सरोवर है उसमें क्रीड़ाएं, जल क्रीड़ा। बंसी धृति, कृष्ण दोपहर के समय में कभी विश्राम कर रहे हैं, सखियां भी विश्राम करने लगे। कृष्ण को पंसी बड़ी प्यारी है, बहुत प्यारी, कृष्ण उसको एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं छोड़ते, यदि सोते भी हैं तो क्या करते हैं, यहां पर लेकर के रख करके दोनों हाथ से ऐसे करते और उसको ऐसे लगा ले अपने पटके में, पटका में क्या कहते हैं उसको, अंदर से खेद करके इसमें लगा दे, लगा करके और ऐसे रख करके कोई ना ले, और कोई भी काम करेंगे किंतु बंसी का सब समय ध्यान रखें। कृष्ण वहां पर सो रहे, नींद नहीं, जगते हुए सो रहे हैं। आदमी सो जाता है ना तो शरीर एकदम छोड़ देता है, ये सब सोने का ही शरीर एकदम अपने आप ऐसा हो जाए, अवस्थ जैसा छूट जाए, किसी शरीर पर दबाव इत्यादि नहीं, कोई ना कोई ऐसा चिन्ह मालूम होगा जिससे कि मालूम हो जाए ये सो रहा है। वो सोने का घोर दर्शन दिखला करके भी सो नहीं, सखियां कह रहे हैं कि आज ये सो गए, आज इनकी बंसी चोरी कर दी, समय जैसे ऐसे कैसे किया जाए इनको मालूम ना हो, आहट भी ना हो, और बंसी तो यहां पर रखे हाथ से निकाल करके ले आए, कौन लाएगा, सब लोगों ने विचार करके किया यह काम श्रीमती के अतिरिक्त और कोई नहीं, आज इनकी पर भाग दिया जाए, वही लाए सब ने पर, उन्होंने कहा जा जो तुम लोगों की इच्छा है तो ऐसे। कृष्ण आज सोने का भान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, सोचते सोचते हाथ ढीला कर दिया, बंसी को भी ढीला कर दिया और ऐसे सो गए जैसे कि आदमी का होश नहीं है। राधिका जी धीरे 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 बिल्ली के पैर के समान तनिक आहट न हो और पहुंच गए, इधर देख रही हैं उधर देख रही हैं, हंस भी रही हैं, सखियों की तरफ में देख करके हंस भी रही हैं किंतु जोर से नहीं, और इधर में बंसी को धीरे धीरे लेकर के कृष्ण जाग रहे हैं किंतु मालूम नहीं होने, उसमें भी उनकी चलाकी है, क्या चलाकी है पीछे, तब उसको बंसी को लेकर के और धीरे 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 आ गई और दूसरे को दे गई और अपने अपने कामों में सेवा में बस। थोड़ी देर के बाद में कुंडल लौटा दिया, उन्होंने कृष्ण को कहा तुम्हारी सर्वस्व चोरी हो गई और तुम अभी तक निश्चिंत होकर के सो रहा है, कहा है वो बंसी तुम्हारा, देखा के बंसी अब बड़ी घबराए, मन खराब हो गया, इधर पूछ रहे हैं उधर पूछ रहे हैं, अब देख इसलिए चुराया कि पूछे मेरा तुमने लिया, फिर ललिता जी को तो उससे उस लाखों गोपियों ने लाखों गोपियों से बातचीत करने का एक मिल गया, वो कहेंगे हम देखेंगे भाई ये कोई चुराया तो नहीं, कपड़ों में चुराया नहीं, इधर उधर इस तरह से लीला बिलास। बंसी हृति रति मधुपान अर्क पूजा, अर्क माने सूर्य पूजा, आदि लीलो इत्यादि कितनी प्रकार की लीला है वहां पर राधा कुंड इत्यादि में विचरण करना है सखियों के साथ में। किसी तरह कितनी प्राकृत लाखों लीलाओं का होंगे तो इस तरह से करते हुए राधा कृष्ण सकृष्ण परस्पर सकृष्ण दोनों से मिलने के लिए परिजन घटया शब्दमानु स्मरण राधा कुंडे सुमिलन विकाराज विभूषण बाम्र उत्कंठ मुग्ध भाव लीला संभोग नर्म आदि रीति दोला खेला बंसी हिति मधुपान सूर्य पूज्य खेला जल खेला बन्यासन बन्यासन माने बन्य का फल मूल का भोजन करना छल सुक्ति छल पूर्वक सोना बन्यासन वन में भ्रमण करना बहुलीलानंद द्विजन परिजन सुबे से परिजन माने सखियां उनके द्वारा परिवेशित राधा कृष्ण सुसेवी मध्यान्ह काले थे स्मरण ऐसे स्मरण करते हुए दोपहर को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 आंखें बंद हैं मन एकदम एकाग्र होकर के उस लीला में आंखों से आंसुओं की धारा और वो सब लीला को प्रत्यक्षवत देख रहे हैं हम लोगों से अभी नहीं होगा इसके लिए ये सब जो उपाय हैं वो सब उपाय करो पहले मन को ठीक करो मन अशांत है मन को अशांत को दूर करने के लिए ये सब जो साधन है उन साधनों को करो सबसे आसक्ति हटा करके और निरंतर अभी तो पहले 1,00,000 नाम करो तो फिर पीछे से 3,00,000 नाम करना और काम सब कब करेंगे तो और काम की जरूरत क्या रहेगी प्रभुनाथ दास गोस्वामी और हरिदास ठाकुर जी रूप गोस्वामी जी दिन रात उनको कोई समय ही नहीं मिलता था भजन के अतिरिक्त और कुछ करने दिन रात ऐसी लीलाओं में मग्न रह करके उन्हीं लीलाओं का लेखन लिखते थे पत्ते जला करके एक एक पेड़ के नीचे एक एक राग इस प्रकार से कोई चीज ये मेरा है कपड़ा है कि कमंडल मेरा है ये भी कुछ नहीं निष्किंचन ब्रह्म और किसी चीज में भी पेड़ में आसक्ति न हो जाए या इस पेड़ के नीचे कृष्ण की ये कोई लीला हो वो हमारे अंदर में स्फूर्ति हो इस भावना से सब जगह संख्या पूर्वक नाम गान नदी कालावसानी निद्रा हार विहार चातंत दीनों से जऊ राधा कृष्ण गुण स्मृते मधुरमान देन सम्मोहित वंदे रूप सनातन ऐसे भजन करो भजन करते 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 चित्त अब संसार की तरफ में नहीं जाएगा यदि आंख इधर भी जाएगी तो ये सब दिखना ही पड़ेगा कुछ क्या दिखेगा देखेगा क्या कृष्ण के सेवा के उपकर्म सब कृष्ण की स्तुति होगी और कुछ दिखाई हावर जंगम देखे ना देखे तारे उनकी मूर्ति नहीं देखता क्या देखता है कृष्ण के सेवा के ऐसी धीरे 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 ये सब कुछ दूर हो जाएगा ये भजन की
Thank you.